قل انما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، قل کہہ دیجئے انما، اور انما جو ہے یہ آپ کو پتا یہ کلمہ حصر ہے اور کیا معنی دیتا ہے؟ صرف. کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف عائزکم بواحدہ، کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، بواحدہ تن ایک ہی. اب آپ دیکھ لیجئے عائزکم جو ہے اس کا روٹ ہے واو عین زوئے، واز سے ہے، اور واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس سے مخاطب کا دل نرم ہو، پگھلے، اور اس پر اس کا جو ہے وہ اثر ہو. دوسرا کیا بات کہی ساتھی، واز کے لیے صفت کیا استعمال کی گئی کہ بواحدہ تن ایک نصیحت. تو گویا کہ مشرکین مکہ کی تمام تر سرکشی اللہ اور اللہ کے رسول کی، جو انہوں نے صریح تکذیب کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ہلاک نہیں کیا جیسے پچھلی قوموں کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہلاک کیا. تو بار بار انہیں جو ہے وہ ایمان کی اور عمل صالح کی جو ہے وہ دعوت دی. تو یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، تم کیسے کیسے الزامات لگاتے ہو، کبھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو رجل ہے، یہ کیا ہے، مجنو ہے. کبھی قرآن کے بارے میں کہتے ہو افک مفترن ہے، کبھی قرآن کے بارے میں کہتے ہو کہ سحر مبین ہے. تو تم غور تو کرو کہ تمہارا کیا رویہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک، بس ایک بات. اور آپ اپنے ذہن میں جو ہے وہ اس بات کو لائیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مخاطب آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھتا ہے اور آپ ان کے سامنے وہ جو الجھی ہوئی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہت سی باتیں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا جواب بھی دینے کو دل نہیں جاتا کہ کیا اس کا جواب دیا جائے، یہ اتنا احمق ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی دفعہ یہ بات اس کو سمجھائی ہے پھر بھی یہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں، کہتی ہیں آپ کی ساری باتوں کے جواب میں بس آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کبھی آپ اپنی اولاد سے کہتی ہیں، کبھی آپ اپنے دوستوں سے کہتی ہیں، کبھی استاد اپنے شاگردوں سے، طالب علموں سے کہتا ہے نا. تو بہت سی باتوں کے جواب میں ایک بات. تو یہاں پہ بھی اہل مکہ کا رویہ ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ نصیحت کیا ہے، ان تقومو، کہ تم جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو ہے کفار مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، ان پر اصل میں حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ. ان تقوم، کہ تم کھڑے ہو جاؤ. قاف و میم قوم سے ہے کھڑا ہونا، اقامت بھی ہے، جب نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا. تو کیا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے، گویا کہ تم خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تم کھڑے ہو. ایسے نہیں کھڑے ہونا، جب تم کھڑے ہو تو اس وقت جو ہے تم سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ کے لیے کھڑے ہونا. تو پھر کیا کرنا کھڑے ہو کر، اور کھڑے ہونے کا انداز بھی بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک بھیڑ ہوتی ہے، اور بھیڑ میں کتنی ہی اچھی نصیحت کیوں نہ کی جائے، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا. مختلف آوازیں ہوتی ہیں، مختلف مفروضے ہوتے ہیں، مختلف خیالات ہوتے ہیں، اور اس شور میں کیا ہوتا ہے کہ حق بات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اور کہا کہ جب تم کھڑے ہو تو پہلی بات یہ کہ اپنی نیتیں صاف کرنا صرف اللہ کے لیے. کوئی پیئر پریشر، کوئی خاندان کے رسم و رواج، کوئی بتوں کی پوجا، کسی سرداروں کی جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ کر مطیع بن کر، کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کھڑے ہونا، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تو تھے، ایک نہیں بس مانتے تھے نا. دوسری بات کیا کہی، جب تم کھڑے ہو تمہاری کیفیت کیا ہونی چاہیے، مسنا و فرادا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسنا جو ہے یہ دو دو کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ عدد معدود ہے. मसना व फुरादा अदद मादूद है, और मसना जो है ये तस्निया का सीगा है। मानी क्या है कि दो दो होकर जो है वो खड़े होना, क्योंकि एक एक के लिए क्या आता है व फुरादा फर्द से है, इसका रूप जो है वो फर्द है, और अलफुरदातु की जमा है फुरादा, इसका वाहिद क्या है अलफुरदातु, और इसके मानी होते हैं तन्हा जाने वाला। अब आप देखिए कुरान में अकेले के लिए नंबर एक अहद आया है, फिर वहीद आया है, नंबर तीन फर्द आया है, नंबर चार फुरादा फुरादा आया है, गोया के चौथा दर्जा है अकेले होने का। तो असल में इसके मानी क्या है कि तन्हा जाने वाला, जैसे जाऊ फुरादा, तो इसके मानी क्या है वो सब अकेले अकेले आए। आप पीछे पढ़ चुकी हैं वलकद जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, और जैसा हमने तुमको पहली दफा पैदा किया था ऐसा ही आज अकेले अकेले हमारे पास आए, है ना। तो सूरत नंबर 6 है, आयत नंबर 95 है, तो इससे क्या बात पता चलती है, इंसान दुनिया में भी अकेला और आखिरत में भी अकेला, कब्र से भी अकेला उठता है, कब्र से भी अकेला उठेगा, और अल्लाह के दरबार में भी जब जाएगा अकेला होगा, कोई उसका साथ देने वाला नहीं होगा, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा, तो अकेला। तो ये जो होता है ना मसना और फुरादा, ये फुआल के वजन पर होता है, और इसके मानी ऐसे ही होते हैं जैसे जो है वो दो दो तीन तीन, जैसे आप सुलासा कहते हैं, या फिर आप कहते हैं रुबा रुबाई, तो रुबाई में भी क्या है कि चार चार, रुबाई कहते हैं उसको है शायरी में भी कि जिसके अंदर चार मिसरे जरूरी हों, इसी तरह सुमान आठ आठ है ना। तो अगर या साथ इसके मिला दिया जाए, जैसे जो है आप कहें कि सुलासी, तो तीन तीन वाली, वाली का फिर इजाफा हो जाता है रुबाई, तो चार चार वाली, और अगर ता साथ इसके बढ़ा दी जाए तो मुअन्नस बन जाता है, जैसे रुबाइया तुन खमासिया तुन, तो वो मुअन्नस बन जाता है, वरना फिर ये जो है वो क्या है मुजक्कर है। तो यहाँ पे भी मसना और उसके बाद जो है वो फुरादा जो है इसके मानी है दो दो और एक एक। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कह रहे हैं कि अब जब तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम जो है वो उठकर खड़े हो जाओ, और खड़े होने की कैफियत ये होनी चाहिए कि दो दो हों और तीन तीन हों, सुम्मा ततफक्करू, फिर करने का काम बताया जा रहा है कि फिर फिक्र करो, ततफक्करू, फिर तुम लोग जो है वो सोचो, अपना दिमाग लड़ाओ। तो इससे मुराद क्या है कि जब जो है ये काम तुम करोगे तो कैसे करना कि दो दो या एक एक, गौर करने के दो तरीके होते हैं ना, एक इंसान होता है कि खलवत में अकेला गौर व फिक्र करता है, और दूसरा ये होता है कि अपने दोस्तों से और अपने मजमे के अंदर एक मशवरा करता है, और फिर बहस के बाद एक नतीजे पहुंचता है। अब इन दोनों तरीकों में से जो तुम्हें पसंद हो उसको तुम इख्तियार करो, लेकिन ये कि जब तुम गौर व फिक्र करो, जब तुम सोचो, तो ये ना हो कि एक मजमे के अंदर सोचो, क्योंकि मजमे के अंदर बाज़ औक़ात आपकी जो अपनी सोच होती है ना वो पीछे रह जाती है। हो सकता है आपके जहन में कोई बात ना हो, जो इर्द गिर्द के लोग बहुत सी बातें कर रहे होते हैं, बस आप फिर उसी पे सोचते चले जाते हैं, फिर आप घर जाते हैं, फिर आप बात पे सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं, संजीदगी से सोचकर मुझे लगता है मामला ऐसा नहीं है, जहां बहुत से लोगों ने जो बात रखी मुझे ऐसी बात नहीं लगती, है ना। तो मकसद क्या है इसका तवज्जो दिलाने का कि तुम अपने जहन से जिद को निकालो, तासुब को निकालो, गुरूर से अपने जहन को पाक करो, इर्द गिर्द की जो बातें हैं, इर्द गिर्द के जो लोगों की हैं, जैसे शिर्क कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं और रस्मों में जो है वो मुब्तला हैं, तो उन पर गौर करने की बजाय, उनकी बातों को सोचने की बजाय तुम क्या करो कि मेरी बातें सुनो, मामले पर संजीदगी से गौर करो, और करना अल्लाह की रजा के लिए, यानी नफ्स के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। बाज़ औक़ात इंसान एक फैसला तो दे देता है, लेकिन क्या कभी दोस्तों को राजी करना होता है भाई, अगर मैं उससे उसके खिलाफ फैसला दे दूं, है ना। मसलन एक एक शख्स खड़ा है और तीन दोस्त हैं। अब दो जो हैं वो आपस में उनका किसी बात पे झगड़ा हो गया है, तो एक दोस्त कहता है कि ये जो है ना इसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये गलत है। आपको ना जज बना लिया जाता है, और आप जो है आपको पता होता है कि जो कहने वाला है ना ये गलत है, लेकिन आप कहती हैं कि अगर मैंने इसकी हाँ में हाँ ना मिलाई तो ये नाराज हो जाएगी। तो आप कहती हैं नहीं, इन्होंने ठीक ही कहा है। तो आप क्या करती हैं कि दोस्त को राजी करने के लिए दूसरे के हक में जो है गलत फैसला दे देती हैं, संजीदगी से गौर नहीं करती, अल्लाह के लिए नहीं करती, है ना। तो हमें, हम जिंदगी में कितनी दफा ऐसे करते हैं कि अदल ना करना और संजीदगी से गौर ना करना, तहकीक कर किए बगैर किसी नतीजे में पहुंच जाना बगैर तहकीक के। एक बात कोई कह रहा था, हमने भी सोचे समझे, बगैर सोचे समझे उसकी हाँ में जो है वो हाँ मिला दी। तो यहां पर जो है कुफारे मक्का को जो है वो क्या कहा जा रहा है कि आप क्या करें कि गैर जानिबदार होकर जो है वो गौर करें। और किसी भी इंसान पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का हक है ना। अगर इंसान जो है वो अल्लाह के बारे में, अल्लाह की कायनात के बारे में, अल्लाह के रसूल और कुरान के बारे में संजीदगी से गौर ना करे और सोचे ना कि मेरे अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझे क्यों शिर्क से मना करता है, तो फिर उस इंसान के दुनिया में जीने पर हैफ है, अफसोस है। जो अल्लाह का ना हो वो किसी का भी नहीं है। तो गोया के कहा जा रहा है कि उठो, इरादा करो, कमरे हिम्मत बांधो, और ये तुम्हारे अरब की सोसाइटी में जो रस्म और रवाज, शिर्क, तासुबाद, जिद, फख्र और गुरूर की जो फिजा बनी हुई है, तो इसको छोड़कर जो है वो क्या करो, गौर व फिक्र करके एक नतीजे पर पहुंचो। और फिर बात क्या है कि भीड़ में ना करना, अकेले अकेले खलवत में करना, या फिर ये कि चलो दो हो जाओ। वैसे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई खास तादाद मतलूब है, बाद मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि कोई खास अदद मकसूद नहीं है, मकसद ये है कि या तो खलवत में और तन्हाई में करो या मशवरा कर लो, लेकिन अपना जो दिमाग है ना उस पर तुम जोर डालो, सोचो। मसलन आप देखिए, क्विज की मिसाल बड़ी खूबसूरत है कि पहले कभी आपके क्विज बहुत से हुए हैं माशाल्लाह, सूरत निसा का हुआ, फिर नूर का है, एजाब का है, कई दफा आपकी डिस्कशन होती है, और उसका मकसद क्या है कि आप लोगों को आता है तो आपको बोलना भी आए, बयान करना आए, दलाइल देने आए, और इस बहाने इंसान याद भी ज्यादा करते हैं करता है और दावा का बेहतरीन जरिया है। मसलन आपका एक क्विज ऐसे भी हुआ कि जिसमें जो है वो क्लास सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम थी, आपका ऐसे भी हुआ जिसमें चार ग्रुप बने हुए थे, है ना, और अभी जो आपका क्विज हुआ उसमें कितने ग्रुप थे, सात। तो अब आप देखें कि जो सात थे, सात ग्रुप वाला जो अभी आपका क्विज हुआ है सूरत नूर का और अहजाब का, तो उसमें क्या फायदा हुआ कि वो जो सोचना था, तहकीक करनी थी, तैयारी करनी थी, वो सात ग्रुप पे तकसीम होके हुई ना, तो ज्यादा लोगों को सोचने का और मेहनत करने का जो है वो मौका मिला। तो एक ये है कि अगर सिर्फ दो दो ग्रुप बना दिए जाएं या तीन बना दिए जाएं, तो आमतौर पे क्या होता है कि बाकी लोग सारे नहीं इतनी मेहनत करते, वो कहते हैं अच्छा मेरी क्लास में जो है ना फला, मेरे ग्रुप में फला फला है, बस दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने ऊपर नहीं गौर करते कि छत का कुछ बोझ मेरे ऊपर भी आए, है ना, क्योंकि छत का बोझ सतूनों पर तो आता है, तो फिर आप सतून क्यों नहीं बनती। और इसी तरह आप देखें कि बाज लोगों के बारे में हम समझते हैं उनको नहीं इतना आता ना, लेकिन आप देखें जब बोझ डाला जाता है, विचार बनाया आपने, तो माशाल्लाह कितना अच्छा उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, कितने अच्छे उन्होंने जवाब दिए हैं। तो एक बात याद रखें, कायनात के निजाम में, कुदरत के कारखाने में कोई चीज नकम्मी और रद्दी नहीं है। ये मेरी और आपकी नजरें हैं, मेरा और आपकी सोच है कि हम किसी के बारे में भी कह देते हैं कि नहीं उसको तो इतना आता नहीं, वो तो इतना बोलता नहीं, उसको इतना जहीन नहीं, उसकी तो उम्र इतनी है, वो तो इतना ऐसा ही है ना, बाज़ औक़ात मैं और आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी को भी निकम्मा और जो है वो कमजोर पैदा नहीं किया, सब बहुत माशाल्लाह बेहतरीन है। तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की खूबियों को सराहना भी चाहिए, और इस तरह जो है वो सोचने समझने का हमें ज्यादा मौका मिलता है, हर एक को मेहनत करने का, तैयारी करने का मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह अगला जो क्विज अब होने वाला है आपका सूरत सबा का और सूरत फातिर का, तो इसमें जो है वो और छोटे ग्रुप बनाने हैं। तो बहरहाल क्या करना, तीन बातें यहां पर कही गई मुशरिकी ने मक्का को, पहली चीज क्या थी, अल्लाह के लिए खड़े हो, नंबर दो एक एक या दो दो, और नंबर तीन सुम्मा तफक्करू, फिर गौर व फिक्र करो, क्या गौर व फिक्र करो, मा बिसाहिबकुम मिन जिन्ना, कि तुम्हारा साथी जो है माँ नहीं है वे साहिब कुम, तुम्हारा साहिब मिन में से जिन्ना जुनून, यानी तुम्हारे साहिब में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जुनून की है जो तुम्हें नजर आती है? कोई है ऐसी बात जो तुम्हारे साथी में हो और जुनून की हो और तुम्हें नजर आती हो? तो तुम्हारे रफीक को जुनून नहीं है, तुम्हारे रफीक को कोई भी जो है वो सौदा नहीं हुआ। तो बात क्या है कि तुम जो है वो अपनी ख्वाहिशात और तासुबात से पाक होकर अल्लाह के लिए गौर करो। और यहाँ पे दो लफ्ज बहुत अहम है, साहिबकुम, इसको आप अंडरलाइन करें और सलकर कर लें, बिसाहिबकुम। अब देखें साहिब सोहबत से है कि वो शख्स जिसकी सोहबत में तुम्हारी जिंदगी गुजरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों में ही तो पले बड़े थे ना, जवान हुए थे। हजरे असवद जो है उसको जब नसब करने की बात थी, कबीले आपस में जब लड़ पड़े थे, तो रसूल अल्लाह को उन्होंने अपना हकम माना था और आपने कितने खूबसूरत तरीके से जो था वो हजरे असवद को नसब करके उनके झगड़े को जो था वो खत्म किया था, है ना। और फिर जब उनको अपनी इमानतें दयानतें रखने की जरूरत पेश आती थी तो रसूल अल्लाह के पास रखा करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत बेहतरीन समझते थे। अब हुआ क्या कि जूं ही आपने जो है बताया कि मुझे नबी बनाकर भेजा गया, तो वही अहले मक्का जो आपको अमीन और सादिक के नाम से पुकारते थे, जो अपने झगड़ों में आपको हकम तस्लीम करते थे, अब आपको मजनू, दीवाना, काहिन, साहिर, शायर और न जाने क्या क्या कहने लगे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, बिसाहिबकुम, तुम्हारा साहिब तुम्हारी सोहबत में, कुम तुम सब का, किसी और का नहीं, कहीं बाहर से नहीं आया, यका यक नहीं आके नबुवत का दावा किया, जिन्हों में से नहीं, इंसानों में से, तुम्हारी सोहबत में, तुम्हारे अंदर पला बड़ा है, तुम्हारे शहर का रहने वाला है, उसकी हालत, उसकी कैफियत, सारी बातें तुम्हें जो है वो अच्छी तरह पता है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुल लकुम बैना यदई अज़ाबिन शदीद। और फिर हुआ क्या, इन नहीं हुआ वो, नहीं है वो मगर नज़ीरुल लकुम, डराने वाला तुम्हारे लिए। और किस चीज से डराता है, बैना यदई, आगे, बैना यदई किस मानी में है, आगे के, बैना जो है वो दरमियान के लिए आता है, और यद हाथ को कहते हैं, यदैन दो हाथ, नून तस्निये का गिर चुका है। अब आप देखेंगे दो हाथों के आगे, दो हाथों के दरमियान, जो दो हाथों का दरमियान है ना, आप मेरी तरफ देखें, वही तो आगे है ना, तो बैना यदैन के तुम्हारे आगे, तुम्हारे आगे क्या है, किस चीज से वो डरा रहा है, अजाब इन शदीद, शदीद अजाब से, कि वो तो एक सख्त अजाब के आने से पहले, जो आगे आने वाला है, उसके आने से पहले तुमको मुतनब्बे करने वाला है, तुमको डराने वाला है। तो ये कसूर है इसका, इस वजह से उसे तुम मजनू कहने लगे, इस वजह से तुम उसे जो है साहिर काहिन और दीवाना कहने लगे। तो हालांकि जो मजनू होता है वो बुरा वक्त आने से पहले जो है वो किसी को खबरदार नहीं करता, वो तो बहुत ही अक्लमंद होता है जो बताता है कि बुरा वक्त आने वाला है, उसके आने से पहले जो है वो तैयारी कर लो। तो अकलमंद कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबाही के आने से पहले आपको तबाही से बचने के लिए कह रहे हैं। और वो तबाही क्या है कि ईमान ले आओ, अमले सवाले कर लो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर जो है अजाब इन शदीद, शदीद अजाब जो है उसे तुम्हें दोचार होना पड़ेगा। कुल कह दीजिए, मा सअलतुकुम, नहीं मैंने सवाल किया तुमसे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले मक्का को पुकार पुकार कर ये बता दीजिए, अहले मक्का को ये बात कह दीजिए कि मैंने आपसे सवाल नहीं किया, मिन अजरिन, मिन कोई अजरिन, अजर कोई या किसी अजर का तुमसे सवाल नहीं किया, फहुवा लकुम, पस वो तुम्हारे लिए है। अब आप देख लीजिए कि यहां पर जो है वो हमें क्या बात पता चलती है कि दाई जो है ना, अल्लाह का दाई, उसका काम दुनिया कमाना नहीं होता। क्योंकि अगर दाई जो है दावत देते हुए अपने कुछ मकासद सामने रखे, या वो दुनिया कमाना चाहे, दुनिया की इज्जत है, कुर्सी है और कुछ भी दुनिया की चीजें अगर वो लेना चाहता है, तो याद रखिएगा इस बात को कि फिर उसकी बात जो है ना वो असर खो देती है, फिर दावत जो है ना वो मुअस्सर नहीं होती। تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات واضح طور پر کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے دنیا کے کسی مفاد کا لالچ نہیں ہے، میں اپنی دعوت میں بہت مخلص ہوں، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں نے تم سے جو ہے وہ کوئی اجر نہیں مانگا، میں نے تم سے کوئی مطالبہ نہیں پیش کیا تمہارے سامنے، ان اجریا الا اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، مجھے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید ہے، میری سچائی، میرا اخلاص، میری کوششیں، میری خلوت اور جلوت، میری صحیح جو کچھ بھی ہے میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ ہیں۔ آپ اب کلاس سے فارغ ہوں گی، آپ بھی ماشاءاللہ یہ کام شروع کریں گی، بس ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ بھی کریں، کہیں کرسیاں لگائیں، کہیں درس دیں، کہیں کلاس لیں، آپ ترجمہ سکھائیں، کچھ بھی کریں، کوئی بھی توفیق جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے اور اپنے دین کی آپ سے خدمت لے لے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی، یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ اللہ آپ کو چن لے، آپ کو چن لے، آپ سے اپنے دین کی خدمت لے لے۔ اور دین کی خدمت تو کیا ہے کہ باغوں سے پھول اور پھلوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہے، میوے چن چن کر جو ہے وہ کھانا ہے، اور خوشبو سے اپنے جسم کو، اپنی روح کو معطر کرنا ہے۔ کچھ بھی خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے لے، تو یہ عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ اس میں ضد نہ کریں کہ یہ نہیں تو یہ کیوں، جو بھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو میوہ اس کو جو ہے، اس میوے سے اپنی روح، اپنے جسم جو ہے اس کو مالا مال کر لیں۔ اور دوسری بات کہ مقصد یہ نہیں ہو کہ لوگ واہ واہ کریں اور ایک عزت ہو اور ایک نمود و نمائش ہو، یا پھر ڈالر ہو یا دولت ہو، صحیح ہے؟ تو یہ بات بہت اہم ہے، اور یہ قرآن میں، یہ بات قرآن میں بہت دفعہ آئی کہ جو بھی نبی آیا اس نے جب دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ سورۃ الفرقان آیت 57 میں آپ پڑھ چکی، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورۃ الفرقان آیت 57۔ پھر آپ دیکھیے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے، یہ جو آیت ہے نا اس کے ایک معنی اور بھی ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ تمہاری بھلائی کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا، میرا اجر بس یہی ہے کہ تم درست ہو جاؤ۔ یہ جو ہے نا، ما سألتکم من اجر فہو لکم، میں تم سے کسی بھلائی جو ہے، میں تم سے کوئی بھلائی نہیں چاہتا، کیا بھلائی چاہتا ہوں؟ فہو لکم، کہ بس تم ٹھیک ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک ہی بات ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور میرا اجر، میری جزا جو ہے مجھے اللہ دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کہ دنیا کتنے ہی مجھ پر الزام لگائے، جیسے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ ساحر ہیں، آپ جو ہیں وہ دیوانے ہیں، مجنو ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ میرا اللہ جو ہے نا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ، ہر بات پر گواہ ہے، ہر بات پر گواہ ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ میرا اللہ میری سچائی اور اخلاص سے بھی خوب واقف ہے، دنیا کتنے ہی الزامات کیوں نہ لگاتی رہے، میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں بے غرض کام کر رہا ہوں، میں کسی ذاتی مفاد کے لیے کام نہیں کر رہا، اور کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ قل، کہہ دیجئے، انا ربی، بے شک میرا رب، کتنا خوبصورت انداز ہے، جیسے بچہ ماں سے کہے کہ امی امی، ابی ابی، ہے نا، جب بھی مشکل پریشانی آئے، جب بھی تکلیف آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ جوان ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، اور بعض کے بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو ماں باپ یاد آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ خود جو ہے ان کے ایک بھائی کے جو ہے وہ والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اپنے بچوں کی بھی، ان کی جو ہے وہ ایک بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے، لیکن اپنے والدہ کی ڈیتھ پر ان کی بیوی بتا رہی تھی کہ وہ اتنے اداس ہیں، اتنے اداس ہیں کہ سنبھل نہیں رہے نا، اور بہت اپنی والدہ سے محبت بھی کرتے تھے، اور بہت انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت بھی کی، اور میں خود اس کی گواہی دیتی ہوں۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ सोलह साल से, जैसे 15-16 साल से उस फैमिली को जानते हैं। और एक होता है जिस्मानी खिदमत, जिस्मानी खिदमत के अलावा माल का जो है ना पैसा, डॉलर या दिरहम दिनार जो भी पैसे वक्त के थे, उन्होंने ना पानी की तरह अपनी वालदा के कहने पर बहाए, जब जैसे जहां कहा इतना उन्होंने जो है वो अपनी वालदा की खिदमत की। और वालदा विवाह हो गई, बहुत साल पहले विवाह हो गई, कई बहन भाई थे, तालीम तरबियत पढ़ाई घरों के काम। और कहते थे कि मुझे जो कुछ भी मिला है, वो कहते हैं ये बात कि जो कुछ मुझे मिला है मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है कि मैं अपनी वालदा से मेरा इतना करीबी और इतना अच्छा ताल्लुक है ना। तो बाकी बड़ी खूबसूरत बात है ये वाली कि उम्मी और ऐसे लगता है। वैसे मैं कहती हूँ कि माँ जब इंसान कहता है ना तो जो है वो दिल की गहराइयों से पुकारता है। आपने पढ़ा है शहाबनामा? अच्छा, तो बहरहाल और वो अपनी वालदा को माँ जी कहते थे, है ना। तो कोई माँ जी कहता है, इलामा इकबाल वालदा फौत हो गई, तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक नज़म लिखी कि अब मेरे खत का कौन इंतजार करेगा और अब जो है मुझे अपनी दुआओं में कौन याद करेगा, है ना। हाँ, तो अब मैं किसके पास फरियाद लेकर आऊंगा ना। तो अभी ये जो आदमी है जो रो रहे थे वो क्या कहते थे, कहते थे कि अब मैं किसको फोन करूंगा, अब मैं किसके फोन का इंतजार करूंगा, अब मतलब तो मेरी माँ चली गई, कौन मेरे लिए दुआ करेगा। सब दुआएं करते हैं, माँ की दुआ बड़ी अजीब है, बाप की दुआ, माँ की औलाद की दुआ। और आप देखें कि अल्लाह तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। कुल कह दीजिए, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, यकसिबु बिल हक, काफ जाल और फा, अजाफा, इसके मानी क्या होते हैं? इसका मतलब होता है क्या करना, आप पढ़ चुकी हैं ना, अभी आपने क्विज में बताया था, कर्ज काजिफ और मकजूफ, इसका मतलब होता है फेंकना, मारना, फेंकना। तो अब जैसे आप फेंकती हैं तो क्या करती हैं, आपके पास कोई चीज है, आप उसको ऊपर से उठाकर नीचे मारती हैं, तो ऊपर से उतारना, गोया के ये लफ्ज जो है फिर किस मानी में इस्तेमाल होता है कि ऊपर से उतारना, नीचे फेंकना, मारना। तो बहरहाल यहां पे जो है इसके दो मानी हैं। एक मानी है इल्मे हक, इल्का करना, मेरा रब जो है यक्सिबु बिल हक्की, वो हक का इल्म जो है वो इल्का करता है। और दूसरे मानी क्या है कि हक को गालिब करता है बातिल के मुकाबले में, बातिल पर हक की चोट लगाता है, हक को बातिल पर फेंक देता है। जैसे क्या मतलब है फेंक देने से, मतलब हक जो है वो बातिल के ऊपर जो है वो मारा जाता है। कैसे मारा जाता है, या अल हक्कु व जहाक अल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कि जहां जहां जो है वो हक आता चला गया वहां वहां से बातिल जो है वो भागता चला गया। और आप देखें कि जैसे किसी पर कोई चोट लगाई जाए और जब चोट लगती है तो क्या होता है कि नीचे की चीज जो है वो खत्म हो जाती है। मसलन सूरत अंबिया आयत 18 में आप ये बात पढ़ चुकी हैं कि बल नक्सबु बिल हक्की अलल बातिली फयदमगहु फाइजा हुआ जाहिक, कि अल्लाह ताला हक हक जो है वो हक को इल्का करते हैं या हक जो है उसको मारते हैं बातिल पर, हक की चोट बातिल पर मारते हैं। फयदमगहु, दमागा के मानी क्या है, उसका भेजा निकल जाता है। फायजा हुआ जाहिक, और फिर वो कैसा है, बस भाग जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, झाग की तरह बैठ जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे भी दूसरे मानी भी हैं, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने हक का इल्म जो है, जो हक है कुरान वही वगैरह, उसको अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको इल्का किया। यकजिफू के मानी क्या है, इल्का करना, नाजिल करना, उतारना। दूसरे इसके मानी क्या है कि हक पर बातिल की जो है वो चोट लगाना, हक को बातिल पर गालिब कर देना। तो ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा रब मुझ पर हक का इल्का करता है। अल्लामुल गुयूब, अब यहाँ पे अल्लाम जो है, अल्लामा मुबालिगे का सीगा है, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, गुयूब गैब की जमा है। और किन चीजों का इल्म रखने वाला, पोशीदा हकीकतों का, कि मेरा रब जो है वो पोशीदा हकीकतों को जो है वो जानने वाला है, उसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, मेरा बाप मेरा रब जो है उसको पता है कि किसके किसको रसूल बनाना चाहिए था। अहले मक्का इसमें भी बिगड़ते थे ना सरदार मक्का के कि हमें क्यों नहीं रसूल बनाया गया, तो मेरा अल्लाह जो है वो पोशीदा हकीकतों को जानने वाला है, उसको पता है सही क्या है और गलत क्या है। कुल जा अल हक, कह दीजिए कि हक आ गया। वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद, और फिर क्या फरमाया कि वमा युब्दिउ, कि जब हक आया तो नहीं, युब्दिउ का मतलब होता है इब्तदा करना, आगाज करना, वमा युब्दिउ और नहीं पहली बार पैदा कर सका, अल बातिलु बातिल, वमा युईद और ना वो दोबारा इयादा कर सकेगा, यानी बातिल जो है पहली बार भी नहीं उबर सका, पहले भी नहीं उबरा और दोबारा भी जो है वो उबर नहीं सकेगा। इसका मतलब क्या है कि हक जो है वो क्या है, कुरान, हक कुरान है ना, और बातिल क्या है, कुफर और शिर्क। अब मतलब ये है कि अल्लाह का दीन और अल्लाह का कुरान आ गया, बातिल मुजमहिल हो गया, खत्म हो गया, अब वो सर उठाने के काबिल ही नहीं है। और उसके साथ साथ जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि हक जो है जब आया, इस्लाम जैसे फैलने लगा मक्का में, तो हुआ क्या, वमा युब्दिउल बातिलु, के बाद बातिल जो है वो तो फिर पैदा भी ना हो सका, वो जो सर ही ना उठा सका, जैसे होता है ना इब्तदा होना, किसी चीज का स्टार्ट होना, वो तो असल में स्टार्ट ही नहीं था, वो तो ऊपर ही ऊपर था, उसकी कोई जड़ें थी ही नहीं, वो तो ऐसे ही झाड़ियां ही थी, तो ना वो पहली बार पैदा हो सका, ना बातिल पहली दफा सर उठा सका, वमा युईद और ना दोबारा कभी पैदा हो सकेगा, ना कभी दोबारा जो है वो सर उठा सकेगा, ना आज और ना कभी बाद में, ना अभी उबरा है और ना आइंदा कभी उबर सकेगा। ये वही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुआ, तो आप जिस दिन मक्का फतेह हुआ आप खाना काबा में दाखिल हुए, आपने क्या देखा, चारों तरफ बुत नसब थे। कितने बुत थे वहां पे, 360 की तादाद हमें पता चलती है। आप कुमान की नोक से उन बुतों को मारते जाते और ये आयत और सूरत बनी इसराइल की आयत पढ़ते जा रहे थे, कुल जा अल हक व जहक अल बातिल इन्नल बातिल काना जहूका, बनी इसराइल की आयत भी और ये वाली आयत भी, और ये से ही बुखारी की रवायत है। तो दलील कुरान से भी मिल रही है, हदीस से भी मिल रही है कि हक के फितरत में सरिश्त में है कि वो गालिब होने वाला है, वही हकीकत है। कुल कह दीजिए इन दललतु, कि अगर मैं गुमराह हूं, फइन्नमा तो पस बेशक, अला नफसी ऊपर है मेरे नफ्स के, अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का नुकसान मुझी पर है, वही तदेतु और अगर मैं हदायत पर हूं, अगर मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं, फाबिमा पस इसके साथ यूं ही बेही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, रब्बी मेरे रब की तरफ से। क्या कहा, कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात भी इनको बता दीजिए, जैसे कि अहले मक्का रसूल अल्लाह को गुमराह समझते थे, है ना, मजनू दीवाना साहिर काहिन सारी बातें, तो अब ये है कि इनको बताइए कि अगर मैं गुमराह हो गया, वो क्या समझते थे कि पहले तो ठीक थे, जब अमीन और सादिक को कहते थे और हकम तस्लीम करते थे, कहते तब तक ठीक थे, अब इसने अचानक जो है वो ऐसी बातें करनी शुरू कर दी है। तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको ये बात कहिए कि इस अगर मैं गुमराह हो गया हूं तो मेरी गुमराही का वबाल मुझी पर है, फइन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी व इन तदैतु और अगर मैं हदायत पर हूं, फबिमा यूही इलैया रब्बी तो अगर मैं हदायत पर हूं तो उस वही की बिना पर हूं जो मेरा रब मेरी तरफ वही करता है, मेरा रब जो मेरे ऊपर वही को नाजिल करता है ना, उसी की बिना पर मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं, इन्नहु समीउन करीब, वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो है कितनी बातें जो हैं वो अल्लाह ताला ने कही हैं। कुल कितनी दफा आया है, क्योंकि अहले मक्का बहुत तंग करते थे, बहुत सताते थे रसूलुल्लाह को, आप सोचिए कितना बोझल होता होगा आपका दिल, कितनी तकलीफ होती होगी, कितना भारी मिशन था, कितनी अहम जिम्मेदारी थी, कभी उनकी एक बात कभी उनकी दूसरी बात, कभी एक इतराज कभी दूसरा, कभी एक मुतालबा कभी दूसरा मुतालबा, نہیں جینے دیتے تھے، نہیں دین کو قبول کرتے تھے، اپنے ہی تھے، رشتہ دار تھے، ان کے درمیان آپ پلے بڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا، کیا کہا؟ رسول اللہ سے کہا کہ آپ ان کو نمبر ون غور و فکر کی دعوت دیں، تحقیق کی دعوت دیں، واضح ایک بات کہیں کہ سوچ سمجھ کر اللہ کے لیے ایک فیصلہ کریں، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا صاحب مجنو نہیں ہے. پھر دوسری بات کیا کہ وہ مجنو کیسے ہو سکتا ہے جو آنے والی مصیبت سے تمہیں خبردار کر رہا ہے، اور مصیبت ہے قیامت کی. پھر تیسری بات، عام طور پہ جو لوگ بہت کہتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں لوگوں کو اور بہت سی تقریریں کرتے ہیں، وہ ضرور نیچے کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جب وہ پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد بھی نہیں تھا، کچھ نہیں چاہیے تھا. پھر چوتھی بات کہ اللہ نے ان کو وحی کی یہ ساری باتیں. پانچویں بات، حق ہے جو بھی آپ نے پیغام دیا، اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا. اور یہ آیت کا حصہ بڑا خوبصورت ہے، انہو سمیع قریب، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ سنتا بھی ہے اور اس کے ساتھ کیا کہا، قریب ہے. اس کا پھر مطلب کیا ہے کہ سنتا بھی ہے اور قریب ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بالکل تنہا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن رہے ہیں. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ غلط ہو تو اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو فوراً ٹھیک کرنے والا ہے نا. دوسری بات اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے، آپ جو دعوت دے رہے ہیں اور اگر لوگ آپ کو برا بھلا کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قریب. اور پیچھے آپ پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے بہت قریب ہے. انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے نا. تو کیا کرو لوگوں، تم مجھ سے ہی مانگو، پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا. ہاں پھر آپ دیکھیں گویا کہ انہو سمیع قریب جو ہے نا، یہ تفویض اللہ کا کلمہ ہے، سپردگی للہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، کہ اگر اہل مکہ میری بات نہیں سنتے، رسول اللہ کی بات نہیں سنتے، اللہ تو سنتا ہے نا، اللہ تو قریب ہے نا، تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھتا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ آگے جو ہے نا، آخری جو آیتیں ہیں اس میں نا بات ہو رہی ہے پھر قیامت کی، عذاب شدید کی، فیصلہ کن گھڑی جو ہے نا اب اس سے ڈرایا جا رہا ہے. اور فیصلہ کن گھڑی ہوگی کیسی، ولو ترا، اور کاش کے تم دیکھو، کاش کے تم دیکھو، اذ فزعوا، جب وہ، فزعوا کے معنی کیا ہے، گھبرانا اور پریشان ہونا، ڈرنا، کہ اس فضے ہو جب وہ گھبرا جائیں گے، فلا فوتا، بس نہیں وہ بچ سکیں گے. فوتا جو ہے یہ کیا ہے، فوتا کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے آگے بڑھ جانا، گرفت سے باہر ہو جانا، رسائی سے نکل جانا، یہ اسم فیل ہے. کیسے، اب آپ دیکھیں کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، وہ تو آگے چلا جاتا ہے، تو آگے بڑھ جانا. تو یہاں کیا مانی ہے، فلا فوتا، کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، وہ کہیں آگے نہیں جا سکیں گے. فلا فوتا یہ اسم فیل ہے، فلا فوتا، گھبرائے پھر رہے ہوں گے لیکن کہیں بھاگ نہیں سکیں گے، کہیں جا نہیں سکیں گے، کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی. واخذو، اور پکڑ لیے جائیں گے. اور اوخذو جو ہے یہ کیا ہے، یہ مجھول ہے، ماضی مجھول ہے، ان کو پکڑ لیا جائے گا کہاں سے، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، قریب کی جگہ سے. اور اوخذو جو ہے یہ کہتے ہیں یہ تفاعل کے وزن پر ہے، یہ نہیں، اوخذو تو فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے، ایک ہوتا ہے نا کسی کو اخذ کرنا، تو معنی کیا ہے، کسی کو پکڑ لینا، جیسے جو ہے فلان چیز کا ماخذ یہ ہے. بعض آپ دیکھیں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پیچھے اس کے ماخذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گویا کہ کتاب کے اندر سے جو بہت سے دلائل ہیں یا بہت سی جو ریسرچ ہے، فلان فلان جگہ سے لے گیا، اس کا ماخذ جیسے اس سے اس چیز کو لے لیا، تو اب یہ مجرم جو ہیں یہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے. اس سلسلے میں مفسرین نے جو ہے اس کے دو معنی بتائے ہیں. پہلی, یہ کون سا وقت ہوگا جب ان کو پکڑ لیا جائے گا؟ ایک رائے یہ ہے جو اکثر کی رائے ہے کہ روزے محشر, حشر کے دن ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نزع کا وقت ہے اور موت کا وقت ہے, تو اس وقت جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے. کیوں؟ موت کا وقت بھی جو ہے وہ میدان حشر ہی کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے نا, تو اس وقت بھی جو ہے کتنا ہی انسان گھبرایا ہوا ہو, کتنا پریشان ہو, اپنی بدعملیاں گناہ کتنے ہی کیوں نہ سامنے آ رہے ہوں, اور کتنا ہی انسان کچھ کیوں نہ کرنا چاہ رہا ہو, لیکن کیا ہے کہ وہ کہیں بچ کے جا نہیں سکتا. دنیا میں انسان پریشان ہوتا تو کہتا ہے کہ اچھا موت ہی آ جائے, لیکن اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو پہلی بات یہ کہ موت ہو یا پھر نزا کا وقت ہو اور جو بھی پریشانی کا وقت ہوگا, تو پہلی بات یہ پتا چلتی ہے, اللہ رب العزت کہتے ہیں کاش کہ تم دیکھتے کہ اس وقت یہ بڑے گھبراہٹ میں ہوں گے. پیچھے آپ دیکھیں کہ جب یہ لفظ آیا تھا فضا کا, تو اس میں آپ نے کیا چیز پڑھی تھی, اس کے ساتھ کیا آیا تھا؟ ان آیا تھا. آیت 23 میں فضیا ان, ان سے کیا معنی میں تبدیلی آئی کہ گھبراہٹ دور کر دی گئی ہے نا, اور یہاں پہ ان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گھبرائے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ مشکل وقت ہوگا, موت کا ہو یا حشر کا, یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ کہیں جا نہیں سکتے, دوڑ نہیں سکتے, کوئی فرار نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ مکانن قریب, قریب ہی سے جو ہے وہ پکڑ لیے جائیں گے, گویا کہ پکڑنے والا قریب ہی چھپا کھڑا تھا, ادھر بھاگنے کی کوشش کی فوراً دھر لیا گیا. وقالو, اور اس وقت یہ کہیں گے آمنا بہی, ہم ایمان لائے. ہی کی ضمیر ہے نمبر ایک قرآن کی طرف, نمبر دو رسول کی طرف. اس وقت یہ کہیں گے مجرم اب ہم ایمان لائے, اور یہ ویسا ایمان ہے جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون, کہ مرتے وقت ڈوبتے وقت کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں, اور پھر اس کو کہا گیا کہ اللہ ڈوبنے والوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. تو اس وقت یہ ایمان لانا چاہیں گے رسول پر, قرآن پر. وَأَنَّا, اور کیوں کر, لَهُمْ, ان کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے, اَتَّنَاوُشُ, تَنَاوُش. تَنَاوُش جو ہے اس کے معنی ہے دور کی چیز پکڑنا, اور اس کا روٹ ہے نون واشی, نوش سے ہے. اور تناوش آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا آسان لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا یہ زیادہ صحیح بات ہے, درمیانی سی کے ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو, یہ آتا ہے ویسے سب کو. آپ کھانے پینے میں کہتی ہیں نوش فرمائیے, ہاں آپ کھانے پینے میں کیا کہتی ہیں؟ نوش فرمائیے. تو نوش کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑنا, ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا, اس کو اٹھا لینا, اور کسی چیز کو اتنی دور سے پکڑنا کہ اس تک ہاتھ پہنچ سکے, مطلوبہ چیز تک رسائی ہو سکے. ویسے پکڑنے کے لیے قرآن میں لفظ آئے ہیں نو, اور یہ اس کا تیسرا درجہ ہے تناوش, کسی دور کی چیز کو پکڑنے کی کوشش کرنا. یہ اخذ جو ہے نا, یہ اخذ اوخذو, یہ پہلا لفظ ہے پکڑنے کے لیے عام ہے. پھر بدشاہ, بدشاہ میں کون سی پکڑ ہوتی ہے؟ سخت پکڑ, سخت گرفت والی پکڑ. ان بطش ربک لشدید. پھر اسی طرح خطفا ہے نا, آپ پیچھے پڑ چکی, یخ یختفو ابصارہم, ہاں اچک لینا, کسی چیز کو لے اڑنا, سنیچ کرنا ہے نا, اچک لینا, جیسے پرندہ کو چیز جلدی سے لے کر اڑ جائے, اس کے لیے پھر آتا ہے. اور بہرحال اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سے لفظ ہیں. تو کیا ہے کہ اب ان کے لیے کیوں کر ممکن ہوگا کہ وہ دور کی چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پکڑ سکے. تو یہاں پہ تناوش جو ہے نا, یہ مصدر ہے, تناوش یہ مصدر ہے, مصدر تاکید کے لیے ہے. اب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے, مگر اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے. تناوش یعنی ہاتھ بڑھا کر مطلوبہ چیز لے لینا. تو کیا ہے وہ مطلوبہ چیز؟ ایمان لانا. اور ایمان کہاں لانا تھا؟ دنیا کے اندر. دنیا ختم, دار العمل ختم, اب تو دار الجزا کا وقت ہے. اب وہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم جو ہیں عمل صالح کریں, ہم ایمان لائیں. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ, اور اب اس وقت جو ہے کہاں ہے, کیوں کر ہے, کس طرح ہے, कहां हो सकता है कि दूर निकली हुई चीज जो है मकानिम बैत, दूर की जगह। अब दूर की जगह क्या है? दुनिया। मौत के वक्त भी सारी जिंदगी दूर की जगह है ना। हशर के मैदान में दुनिया की जिंदगी क्या है? मकानिम बैत, दूर की जगह है। अब दूर निकली हुई चीज हाथ नहीं आ सकती। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वकद कफर उबही मिन कबलू, और इससे पहले ये क्या करते थे? कुफ्र करते थे। वकद कफरू, यहाँ पे कद भी आ गया है और माजी से पहले जो है वो जब कद आ जाता है तो फिर क्या मानी देता है? और बेशक कुफ्र किया इन्होंने, ताकीद आ जाती है, कद ताकीद के मानी, तहकीक कुफ्र किया इन्होंने, वही इसके साथ ईमान कुरान रसूल इन सब चीजों के साथ इन्होंने इनकार किया, मिन कबलू पहले ही, इससे पहले। और यकज़िफूना बिलगैबी, और ये क्या करते थे? और ये तीर चलाते थे। कजफा के मानी क्या होते हैं? फेंकना, जैसे होता है ना बेतुकी बातें करना, तो ये क्या करते थे? ये तीर चलाते थे बिलगैबी बिन देखे, मिम मकानिन जगह बईद दूर की। तो यहां पे मकान से क्या मुराद है? मकान से मुराद, जैसे पीछे मकानिन करीब से मुराद क्या है? आपने क्या पढ़ा कि मकानिन करीब, एक आपने पढ़ा कि करीब ही फरिश्ता होगा जो उनको पकड़ लेगा, है ना। दूसरा आपने मकानिन बईद से दुनिया, दूर की जगह उनके लिए दुनिया है, है ना। अब यहाँ पे मकानिन बईद जो है वो इससे मुराद क्या है कि बिला तहकीक जो दूर दूर की कोड़ियां लगाते थे, तो मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो ये है, नंबर एक के ईमान लाने आ था उनको तो वो ईमान ना लाए, है ना। उनके उनके उनका क्या काम था कि वो दुनिया में ईमान ले आते, अब ईमान लाना जो है वो उनके लिए कोई फायदा मंद नहीं है, क्योंकि बिला तहकीक ये ईमान की जगह दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे। तो बाज लोग कहते हैं कि बईद से मुराद जैसे दिल है, मकान से मुराद दिल है, और दिल के अंदर इनके कुफर था, शिर्क था, और बहुत सी अल्लाह की जो थी वो नाफरमानियां थी। तो मकानिन से मुराद क्या है? दिल, कि इनके दिल के अंदर ही हसद था और कदूरते थी, तो इसलिए जो है ये ईमान जो है वो ना लेकर आए। और वो क्या करते हैं? वह यकज़िफून बिलगैबी, और ये जो है वो कोड़ियां लाया करते थे, दूर दूर की, दूर दूर से बातें किया करते थे, बिला तहकीक बात करना। अब दिल के अंदर ही अगर कीना को दूरत हो तो तहकीक कहां से होगी, है ना। तो यहाँ पे मकानिम बईद से मुराद के दिल के अंदर ही इनका अकीदा ठीक नहीं था, इसलिए वह यकज़िफून बिलगैबी। और यकज़िफून बिलगैबी, अनदेखे बातें करना कि रसूल जो है झूठा है और कोई किताब नाजिल नहीं हुई और कोई फरिश्ता नहीं आता, और मजनू और दीवाना कहना, बहुत सी ऐसी बातें करना, तो ये सारी बात इसके अंदर जो है वो पाई जाती है कि ये बिला दलील अपने ख्याल से बात करते थे। अच्छा, अरबों का ये मुहावरा भी है, एक होता है रजम बिल गैब, एक होता है कजफ बिल गैब। रजम बिल गैब का मतलब क्या होता है? कि बिन देखे जो है वो पत्थर मारना, अंधेरे में तीर चलाना। तो रजम बिल गैब बिन देखे किसी को पत्थर मारना, और कजफ बिल गैब बिन देखे जुमले मारना, बातें मारना, बगैर जाने बातें करना। तो ये भी याद कर ले, रजम बिल गैब कजफ बिल गैब, ये औरतों के अंदर बीमारी बहुत पाई जाती है कि बाज़ औक़ात पत्थर मारना से मुराद ये नहीं होता कि आप हाथ से ही पत्थर मारी हैं, आपके अल्फाज आपके जुमले ऐसे होते हैं जो पत्थरों से ज्यादा सख्त होते हैं। और मसलन आपके दोस्तों का एक ग्रुप है और किसी ने कोई बात कही है और वो जो है वो किसी को नहीं कही, लेकिन होता क्या है कि एक दोस्त दूसरे को कहता है कि ये तो तुम्हारे बारे में कही है। अब कहने वाले को के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। अब दूसरा कहता है कि अच्छा अगर इसने कही है तो अच्छा मेरे बारे में कही, और ये कितना मेरा मुखलिस है जो मुझे ये बात बता रहा है, तो ये क्या है? और हो ये झूठी बात तो ये क्या है? ये इसको क्या कहेंगे? रजम बिल गैब कज़फ बिल गैब। और घरों के अंदर इससे बाज़ों का तलाके हो जाती हैं कि शौहर ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, या मेरी जो सास थी उसने शायद मेरे बारे में ऐसा कहा। और बाज़ों का आप ऐसे ही जस्ट ऐसे बाज़ों का कोई जुमला बोल देते हैं, है ना। बाज़ों का घर के अंदर औलाद है वालदैन कोई बात कह देते हैं और इसी तरह रिश्तेदार आपस में कुछ कह देते हैं, दोस्त कुछ आपस में कह देते हैं, तो ऐसा शख्स बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अहले मक्का जो थे वो भी क्या करते थे, उनके अंदर क्या बीमारी थी, यक्ज़िफूना बिलगैबी मिन मकानिन बईद, कि दूर की बातें करते थे, झूठी बातें करते थे कि ये कुरान और ये रसूल और ये वही और कयामत और सब चीजें जो है ये ठीक नहीं है, है ना, बिला तहकीक दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे। तो उनको तो हम बुरा भला समझते हैं, हमारा अपना हाल क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी बगैर तहकीक के कोई बात कह देते हैं, कहने वाले को खबर नहीं और आपको उसकी खबर है कि उसने क्या कहा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हम, मुझे, मैं अपनी अपनी जिंदगी में इस बात पे वैसे सोचती हूँ कि जिंदगी में कई दफा ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो, बाद वक्त एक जुमला आपने बोला था उसका इतना आपको खमियाजा भुगतना पड़ा कि आप फिर अपनी जबान को खींचती हैं और कहती हैं काश कि मैंने ये जुमला ना बोला होता, क्योंकि मेरा तो कोई मकसद था ही नहीं, ऐसे ही बोला था, लेकिन उससे क्या होता है कि फितने, लड़ाइयां, झगड़े, तलाके, न जाने क्या क्या हो जाता है ना। तो इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अपनी जबान को पकड़कर खींचा करते थे, रोया करते थे, जबान को पकड़कर खींच रहे हैं, रो रहे हैं कि ये जबान है जो कयामत के दिन जो है वो हलाकतों के बल जो है वो जहन्नुम के अंदर डालेगी। तो बड़ी खूबसूरत ये बात है, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक अता करे कि हम अपनी जबान की हिफाजत करें। तो वो बिला तहकीक दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे, फिर वही बात कि दिल में अकीदा नहीं था, ईमान नहीं लाते थे और फिर कुफ्र, शिर्क और बातें करते थे। वहील बैनहुम, और हायल हो गई इनके दरमियान, व बैनमा यश्तहूना, और जिस चीज का वो इश्तिहा करते थे उसके दरमियान, इनके दरमियान और उनके इश्तिहा के दरमियान हायल हो गई। क्या चीज हायल हो गई? अब असल में मा यश्तहून को समझना बहुत जरूरी है। यश्तहून पहले समझते हैं इसके क्या मानी होते हैं, आप पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है, शीन हा वाओ शाबाश, ऐसी ख्वाहिश जो के फितरी ख्वाहिश है, ऐसी ख्वाहिश जैसे जो बहुत शदीद ख्वाहिश हो, जैसे आप कहती हैं इस वक्त मुझे इश्तिहा है, मुझे भूख लगी हुई है। अच्छा, और ऐसी ख्वाहिश होती है ये कि इसमें जो है किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, आपको नींद आ रही है, ये भी एक इश्तिहा है, जब नींद आती है खुद ही आंखें बंद हो जाती हैं, आप क्लास की तैयारी कर रहे हैं, पेंसिल आपके हाथ में है, मैं क्लास की तैयारी कर रही हूं, और कभी क्या होता है कि वो पेंसिल से ना लाइनें लग जाती हैं कुरान के ऊपर, कि पता नहीं चला कब नींद आ गई, इतनी गहरी नींद आ गई और इतने थके हुए थे कि। तो ये क्या है नींद? नींद जो है ये एक फितरी ख्वाहिश है जो खुद ब खुद बगैर किसी के कहे आंखें बंद होने लगती हैं। इसी तरह भूख, कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद आप काम कर रही हैं बगैर किसी के साथ साथ उठकर आप थोड़ा बहुत खाती हैं इसलिए कि आपको भूख लगी है। इसी तरह जो जिनसी ख्वाहिश है इसकी इश्तिहा, तो असल में शहवत या शहव या इश्तिहा ऐसी ख्वाहिश को कहते हैं हर कीमत पर इंसान उसको चाहे, दिल मचल जाए, दिल तड़पने लगे, दिल चाहने लगे, बस मुझे ये चीज चाहिए, है ना। तो यश्तहूना, जो वो तमन्ना किया करते थे। माँ 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 जो है ना, इसको आप अंडरलाइन करें, बल्कि इसको हाईलाइट करें, बल्कि इसको सर्कल करें, क्या वो तमन्ना किया करते थे? माँ, जो वो तमन्ना किया करते थे, माँ के अंदर दुनिया के में जो कुछ है वो सब कुछ, दुनिया में दौलत है, सामान है, जिसको वो पसंद करते थे, जो मकसूद है। अब मौत जब आई तो मौत ने उनके और दुनिया के दरमियान जो है ना वो क्या हुआ, मौत उनके दरमियान हायल हो गई, पर्दा आ गया, रुकावट हो गई। तो गोया वहील बैनहुम व बैनमा यश्तहून, और हायल हो गई इनके दरमियान और जिस चीज की वो तमन्ना किया करते थे, और वो क्या चीज है जो उनकी ख्वाहिशात थी, कभी दुनिया की दौलत चाहिए, कभी दुनिया की इज्जत चाहिए, कभी वो ये कहते थे कि हमें ही रसूल जो है वो क्यों ना बना दिया गया, और दुनिया की अनगिनत नेमतें, हर मकसूद और मतलूब जो चीज उनको थी, जो महबूब चीज थी, मौत आई और उसका पर्दा जो था वो हायल हो गया और इनको उन चीजों से महरूम कर दिया गया। या फिर आप ये भी कह सकती हैं कि इससे मुराद जो है वो कयामत है, आखिरत है। दुनिया में मौत आती है ना, सब चीजें छूट जाती हैं, कुछ भी साथ नहीं आता। और हम किससे मोहब्बत करते हैं? औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मौत जब आती है तो औलाद में और वालिदैन के दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। मौत का शिकंजा आकर ऐसे कस लेता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ख्याल आता है कि क्या होगा इनका, लेकिन अब उनके दरमियान पर्दा आ गया। इसी तरह आप पीछे जिक्र हुआ था ना माल और औलाद का, आप उसको ही अपने जहन में रख लें। माल और औलाद का जिक्र था ना, वो कहते थे हमें माल और औलाद ज्यादा मिला है उसी पस मंजर में, तो मां यश्ताहून जो ये चाहते थे, इसके दरमियान मौत ने या फिर आखिरत ने जो है वो एक पर्दा हायल कर दिया। या फिर आप ये कह सकती हैं मां यश्ताहून को अगर पिछली आय से मिलाएं कि वो वकाल हुआ मन्ना बही, वो कहेंगे कि हम ईमान ले आए। अब आखिरत में वो ईमान लाना चाहते हैं, वो ईमान के जन्नत के अजाब के दूर करने के तलबगार हैं कि उनसे अजाब हटा लिया जाए। वही लबैना मां यश्ताहून, अब ना उनको जन्नत मिल सकती है, ना वो ईमान ला सकते हैं, ना आखिरत जो है उसमें उनको निजात मिल सकती है। अब उनके दरमियान पर्दा है, अब कुछ भी नहीं है। कमा फौइला बेअशियाएहिम मिन कबल, कमा जिस तरह फौइला किया गया, माजी मजहूल है, बेअशियाएहिम, और ये अशिया जो है ये शिया तो उनकी जमा है, किसी शख्स के ताबे और हम ख्याल को उसका शिया कहते हैं। गोया के इसके मानी क्या है कि जो उसके साथ चलने वाले होते हैं, जो हम मशरब होते हैं, तो जो इसके साथ चलने वाले हैं उनके साथ क्या हुआ था? कमा फोइला, जिस तरह किया गया, बेअशियाएहिम इनके हम मशरबों के साथ, इनके साथियों के साथ, मिन कबल इससे पहले, और इनके साथ चलने वाले कौन थे, इनके साथी कौन थे अहले मक्का के? आद, समूद, मदियन और फिरौन वाले। कि तारीख इस बात पर शायद है कि जिन कौमों ने अपने रसूलों को झुठलाया, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की किताबों को झुठलाया, तो उनका क्या अंजाम हुआ कि फिर जो थे वो तबाह बर्बाद कर दिए गए, फिर मौत आई और फिर जो है उनका फैसला ही कर दिया गया। तो अब इनके और इनकी इश्तेहा के दरमियान, इनकी ख्वाहिशात के दरमियान जो है वो पर्दा हायल कर दिया गया, अभी से इनको महरूम कर दिया गया, जैसे कि इनके पहले जो साथी थे ना उनको महरूम कर दिया गया था जब उन्होंने झुठलाया था। इन नहुम कानूफी शक की मुरीब, बेशक ये लोग जो थे ये मुब्तिला थे शक की मुरीब में, गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। तो मुरीब जो है ये कौन से शक को कहते हैं? गैब से है ना, ऐसा शक जो इंसान को जो है वो तरद्दुद में डाल दे, उलझन में डाल दे। तो शक की मुरीब, अब शक है, शक के साथ मुरीब आ गया, ये ताकीद के लिए है क्योंकि शक भी तो शक ही है ना, फिर मुरीब उसकी सिफत के तौर पर दोबारा आ गया और ये भी रैब से है। तो मान ये है कि दरअसल ये उलझन में डालने वाले शक में पड़े हुए हैं। और अब क्या हुआ कि फैसला कुन घड़ी इनके सर पर आ गई और ये रहे शक में और कुछ किया ही ना। इस सिलसिले में हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हु का एक कौल बड़ा खूबसूरत है, इसको आप याद कर सकती हैं और मैं भी याद करूं। हजरत कतादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रैब और शक से बचो, जो शक की हालत में फौत होगा उसी हालत में उठेगा, और जो यकीन पर मरेगा कयामत वाले दिन यकीन ही पर उठेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? पूरी सूरत सबा जो है इसका निचोड़ क्या है, खुलासा क्या है? शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी पैदा की जाए, शक ना किया करें, और जो है वो अपना वक्त जो है वो तहकीक करें, किसकी रिसर्च करें, किसकी? सदाकत की, ईमान की, नेकियों की, अच्छे कामों की। तो अच्छे कामों के लिए इश्तेहा होनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए, भूख लगनी चाहिए कि फिर जो है मेरी और आपकी तमन्ना बन जाए कि मैं नेकी करूं, मैं अच्छी बन जाऊं। और ये मैं और आप कर नहीं सकते जब तक कि हमारे अंदर जो है वो शुक्रगुजारी पैदा ना होगी। और शुक्रगुजारी जो है उसकी पांच बुनियादें मैं और आप मत भूलें, क्योंकि ये जो पांच असासे हैं शुक्रगुजारी की, उनमें पहली चीज आजजी और इंतसारी है, फरोतनी। दूसरी चीज फिर जो है मोहब्बत का पैदा होना है, मोहब्बत जो हमें नेमते दे रहा है उसके लिए मोहब्बत। और तीसरी चीज फिर नेमतों का एतराफ करें, मोतरिफ। और चौथी चीज फिर उस बिना पर उसकी सना करें। और फिर पांचवी चीज क्या है کہ پھر وہی کریں جو کہ نعمت دینے والے کو پسند ہے، اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس چیز کو اس کی ناپسند کی جگہ پر استعمال نہ کریں. تو آئیے اپنے وجود کو اللہ کی بندگی میں جو ہے نا ہلکان کر دیں. مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بہت سی دو باتیں ہیں. عبداللہ بن مسعود کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گی، اکثر باتوں میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نا جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے تھے نا، اس پہ رش کیا کرتے تھے کہ کاش کہ اس کی جگہ عبداللہ بن مسعود ہوتا. ذوالبیدین ایمان لائے، یتیم تھے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ زخمی پاؤں اور چھالے والے پاؤں کے ساتھ مدینہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی پذیرائی کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو بڑے بڑے صحابہ کے پاس سواری نہیں ہے وہ جانا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے ذوالبیدین میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ نے ان کی سواری کا انتظام کیا ہوا ہے. کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں بچوں کی طرح خوشی سے ذوالبیدین پتہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں جہاد پہ جا رہا ہوں، بہت اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میں شہید ہوں اور میرا اللہ اور میرا اللہ کا رسول مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، یعنی مجھے موت اس حال میں آئے. اور کہتے ہیں کہ کوئی درخت کی چھال وغیرہ بھی اتار کر لائے تھے جس پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے کچھ لکھا تھا ان کے لیے. تو اچھا اب ہوا کیا کہ میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کو بہت زور کا بخار آ گیا اور وہ فوت ہو گئے. ذوالبیدین جو تھے راستے میں جب فوت ہو گئے، زور کا بخار آیا اور فوت ہو گئے. اور فوجوں کا پڑاؤ تھا اور رات کا وقت ہے اور لالٹین اٹھائی ہوئی ہے صحابہ نے اور آپ کو دفنانے کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں، تو آپس میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ جو عیسائی تھے کون حملہ کر رہا تھا اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر؟ روم کے لوگ تھے نا، تو روم میں کون آباد تھے؟ عیسائی. تو کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ کسی نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آ گیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ ذوالبیدین فوت ہو گئے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر کھودی گئی، ابوبکر اور عمر فاروق نے ان کے جنازے کو اٹھایا ہوا تھا، میت اٹھائی بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ادبا اخاکم ادبا اخاکم. ابو بکر اور عمر سے اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے بھائی کا ادب کرتے ہوئے اس کو نیچے لے کے جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کاش کہ ذوالبیدین کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ ذوالبیدین کی جگہ میں ہوتا. ادبا اخاکم. اب سوچیں اللہ کے رسول بھی ان کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہیں اور ابو بکر اور عمر فاروق بھی. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال تھا، ساری زندگی ایمان لائے دیر سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں دیر سے لائے، ساری زندگی رشک اور مقابلہ کرتے رہے اور مقابلہ بھی کس سے؟ بیسٹ بندے سے، ابو بکر کا مقابلہ کرتے رہے رضی اللہ عنہ. لیکن اس مقابلے میں حسد نہیں تھا، اس مقابلے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرانا نہیں تھا، اس مقابلے میں نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا، پیار کی کیفیت تھی. بہت مجھے خوبصورت ان کا بھی کردار لگتا ہے. اور ان کے بھائی عمر میں ان سے 2-3 سال بڑے تھے، زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی دو چیزوں میں مجھ پر سبقت لے گئے، ایک ایمان لانے میں اور دوسرا جامع شہادت نوش کرنے میں. اپنے زید بن خطاب بھائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا بھائی دو چیزوں میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، ایک ایمان لانے میں اور دوسرا جامع شہادت نوش کرنے میں. میں اور آپ کس بات پر لڑتے رہتے ہیں؟ میں اور آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ گھر کے اندر بھی کبھی شوہر کا شکوہ، کبھی ساس کا، کبھی دیرانی کا، کبھی جٹھانی کا، کبھی بچوں کا، ہر وقت میں اور آپ نہ نشکری، رونا دھونا. اور بات یاد رکھیں، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، بڑی مختصر ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس کو شکوہ اور شکایتوں میں ضائع کر دیا، نشکری میں ضائع کر دیا، تو پھر آخرت کیسے کمائیں گے؟ پھر جنت کی تیاری کیسے کریں گے؟ وقت بہت تھوڑا ہے اور جنت بڑی مہنگی ہے اور بڑی قیمتی ہے اور بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. اور وہ بہنیں اور وہ مسلمان، وہ بہنیں ہیں یا بھائی جو جنت سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کو بہت سی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا. ये शिकवे, ये शिकायतें, ये रोना धोना, ये नशुक्री करना, इसको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। हर कीमत पर क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। कल्बे सलीम, तड़पने वाला दिल, जिसको सांप ने डस दिया हो, जो तड़पता है दुनिया के लिए नहीं, इज्जत दुनिया की इज्जत के लिए नहीं, दुनिया मुझे क्या कह रही है, भूल जाइए इस बात को। आइए अपने दिले नादा को ये बात समझाएं कि मैं और आप जो है, हम सबको एक अच्छा और बेहतरीन मुसलमान बनना है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।